मैंने बताया ना कि ज्ञान की आयु बड़ी है, शरीर की आयु 4 महीने 5 महीने छोटी है। जैसे वो शास्त्रों में अर्जुन का वो अभिमन्यु का आता है ना, तो बस वो कोठा 7 कोठे का ज्ञान लेकर के ही हम जन्मे। और जब पहली बार मधुबन में लेकर के आए तो बाबा ने जब पहली बार गोद में लिया, ब्रह्मा बाबा ने, भाग्य विधाता, भाग्य का लेख लिखने वाला उसको कहा जाता है, तो सचमुच भाग्य का लेख लिख दिया। और बाबा के ये महावाक्य थे, पहले पहले बच्ची यज्ञ से गई है और यज्ञ में ही आने वाली है, क्योंकि हमारे यहां 4-5 पीढ़ी से कोई कन्या ही नहीं थी, हमारे बाप दादा की भी कोई बहन नहीं थी, और कोई होती थी तो जीती नहीं थी। और मैं भी वास्तव में बचपन से बहुत बीमार रहती थी, बहुत बीमार, कि आज गई और कल गई। लेकिन बाबा ने ही जैसे मुझे जीवन दान दिया और उस घर में उन लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए मुझे भेजा, मैं उस घर की तो नहीं थी, लेकिन दादी माँ हमारी बहुत पूजा पाठ करती थी कि शायद हमारे परिवार पर किसी का श्राप है, इसीलिए हमारे यहाँ कन्याएं नहीं होती हैं। भक्ति में तो ऐसा समझते हैं ना कि भई हमारी देहली कुआरी रह जाएगी, तो किसी की कन्या को भी लेकर के उसकी शादी कराते हैं। तो जब भक्ति बहुत करती थी मेरी दादी माँ, तो बाबा ने उसका सुन लिया और मुझे उसके यहाँ भेज दिया, लेकिन भविष्य भी पढ़ दिया। और इसी प्रकार छोटेपन से ही, जैसे कि मैं बहनों के साथ में ही रही, घर का अन्न बहुत कम खाया इसलिए हष्ट पुष्ट हूं, यज्ञ का ही खाया है, और अधिकतर पढ़ाई भी सेवा केंद्र में रहकर के ही की है। ये तो बाद में जब बोर्ड की परीक्षा या कॉलेज का हुआ तब मैं घर में रहकर के पढ़ी, लेकिन बचपन से ही जो भी बहनें हमारे नजदीक के सेंटर में होती थी उनके साथ में ही रहती थी, क्योंकि बहनें अकेली होती थी तो मैं साथ में रहती थी और वहीं से ही पढ़ना लिखना जाया करती थी। लेकिन जो भी हमारी वैकेशन होती थी, कभी भी लौकिक वालों के यहाँ त्यागी जी नहीं भेजते थे, क्योंकि उनको एक बार पता चल गया बाबा के यज्ञ की अमानत है, बाबा ने कहा ये अमानत दी है तुमको, तो उसी रीति से ही संभालते थे। तो जब भी वैकेशन होता था तो किसी भी लौकिक घर परिवार वालों के यहाँ, संबंधियों के यहाँ जाना नहीं होता था, वैकेशन हमेशा मधुबन में ही। इसलिए छोटेपन से मधुबन में ही हम आए हैं। उस समय तो ज्ञान तो इतना नहीं था और इतनी सारी क्लासेस भी नहीं होती थी। सुबह की एक क्लास हुई, बाबा की उंगली पकड़ करके घूमने चले गए और फिर नाश्ता वास्ता आकर के किया, फिर हम बच्चे बच्चे घूमने फिरने चले जाते थे, चेरी खा जाते थे। तो बचपन था तभी, लेकिन वो बचपन के दिन सचमुच बहुत ही इतने यादगार बीत गए ना कि आज भी हम वो दिन याद करते हैं तो शक्तियां हमको फिर से एहसास होती हैं। तो इस तरह से जैसे खेल कूद में ही हमारा यहाँ मधुबन में गया, बचपन था तो कुछ ज्ञान योग ज्यादा नहीं करते थे, परंतु बाबा की अट्रैक्शन बहुत थी। ज्ञान की गहराई नहीं थी, लेकिन बाबा की जो रूहानी पर्सनैलिटी वो बहुत खींचती थी। मम्मा को तो जैसे बहुत ही छोटेपन में, मैं समझती शायद 4-1 वर्ष की मैं होंगी तब मम्मा को देखा, तो ऐसे लगता है जैसे कोई बच्चा भी तो होश ही संभाल रहा होता है ना, और उसकी माँ गुजर जाती है बहुत छोटी, 4-5 वर्ष की। तो मम्मा मेरठ में आई थी, तो ऐसा मालूम था कि कोई आ रहा है, कौन आ रहा है कुछ पता नहीं था। तो जैसे बच्चों का तो कार्यक्रम में क्या होता है, कल्चरल प्रोग्राम ही होता है, तो बहनों ने हमें कविता सिखाई थी कि जब मम्मा आकर के बैठेगी ना उस समय तुमको ये पोयम बोलनी है। ने कहा ठीक है। तो जब मम्मा आकर के बैठी, बहुत पब्लिक थी, बहुत पब्लिक थी वहां, तो हमको एक पोयम सिखाई थी। मुझे शुरुआत का तो अभी भी याद नहीं, लेकिन बीच की 2-3 पंक्तियां मुझे याद हैं। काम क्रोध की चटनी बनाओ, लोभ मोह की थाली, और मम्मा की तरफ अपने इशारा करते हुए कहा, सामने बैठी काली देखो, सामने बैठी काली। तो पूरी पोयम भी नहीं की, मम्मा ने फट गोद में ले लिया। तो वो मम्मा का एक शक्तिशाली पवित्र स्पर्श, वो शीतल गोद सचमुच आत्मा के ऊपर अमिट छाप छोड़ गई, अनजान पने में ही, क्योंकि बहुत छोटेपन की बात है। बस वो ही याद है मुझे, इतना ज्यादा याद नहीं है मम्मा का, लेकिन इतना याद है कि कैसे मम्मा ने सभा के बीच में मुझे गोद में ले लिया। तो इस तरह से त्यागी जी ने तो बहुत पालना ली मम्मा की, लेकिन हमने 1 या 2 बार मम्मा की गोद ली थी, तो वो हमको अच्छी तरह से याद है। लेकिन बाबा के साथ के काफी संस्मरण रहे, क्योंकि जो हमारी 1.5-2 महीने की छुट्टी होती थी स्कूल में, तो हमको धुन रहती थी, मधुबन जाना है, मधुबन जाना है, कोई जाए या ना जाए लेकिन हमको जाना है। और स्कूल में से कंसेशन मिलता था टिकट का, रेलवे की टिकट का कंसेशन सर्टिफिकेट मिलता था, तो दिल्ली से यहां तक कि उस समय शायद 10 रुपया टिकट होती थी, लेकिन 10 रुपया बहुत मायने रखता था उस समय का। तो हर वेकेशन में मधुबन आना ही है, ये हमारा अंदर में फिक्स होता था, और सभी बच्चे बच्चे मिल करके हम पूरा साल प्लानिंग करते थे कि इस बारी मधुबन में जाकर के क्या क्या कल्चरल प्रोग्राम करने हैं। तो वो कल्चरल प्रोग्राम सारे हम तैयार करके आते थे, और हर रोज रात को हमारे यहाँ कल्चरल प्रोग्राम होते थे। तब तो सिर्फ हिस्ट्री हॉल ही था और कुछ बड़ा नहीं था। और उसके बाद हम लोग जैसे कि यहाँ खेल कूद ही करते थे, तो एक बार हम लोग नाश्ता करने के बाद, 6-7 बच्चे थे, और हम निकल गए घूमने के लिए। जब घूमने के लिए निकल गए तो पहाड़ी पर चढ़ते गए, चेरी तोड़ते गए, खाते गए, पहाड़ी पर चढ़ते गए, अचानक बहुत काले काले बादल आ गए। और यहां पर तो जब बादल एकदम काले आते हैं ना, तो बहुत जोरदार बरसते हैं, तो हमको ये तो पता चला भी बरसात आएगी, तो इसलिए हम वापस पांडव भवन की तरफ दौड़े, लेकिन बहुत जोरदार बरसात आई और हम लोग भीग गए, सभी भीग गए। अभी हमको डर लगा कि हम जब वापस जाएंगे ना, तो हमारी माँ देखेगी तो हमको डांटेगी, तुम भीग कर आए हो, क्यों गए थे। लेकिन जैसे हम पांडव भवन में एंटर हुए ना, बरसात तो बंद हो चुकी थी, लेकिन हम एकदम भीगे हुए थे। साकार बाबा बाहर, सब लोग तो सोए पड़े थे, दोपहर का टाइम था, लेकिन साकार बाबा बाहर में चक्कर लगा रहे थे। और जैसे ही हम आए, अरे बच्चे भीग गए, चलो चलो चलो, हम सभी को बाबा अपने रूम में लेकर के गए। डर तो हमारा निकल गया, इतना प्यार से बाबा ने बुलाया। तो पहले तो डर डर के हम अंदर आ रहे थे, लेकिन बाबा का जो प्यार भरा आवाहन, उससे एकदम डर निकल गया। और बाबा, हम चार पांच बच्चे थे, सभी को अपने रूम में ले गए, जहां हम लोग मेडिटेशन करते हैं ना, अभी बाबा का रूम जिसको बोलते हैं, ये आधा था। अभी तो बड़ा कर दिया, बच्चे बहुत हो गए हैं, इसलिए पहले वो आधा था। तो बाबा हमको अपने रूम में ले गए और बाबा ने नीचे गद्दा बिछवाया और फिर हम सभी के कपड़े बदलवाए। उस समय संतरी दादी हुआ करती थी बाबा के साथ में, लच्छू दादी भी होती थी, लेकिन सारा सौगात का ये सब कुछ संतरी दादी संभालती थी। तो बाबा ने कहा, संतरी जाओ इन बच्चों के कपड़े बदलवाओ। फिर हम लोग आए, फिर कहा जाओ गरम गरम दूध लेके आओ। हमारी तो खातरी हो, गलती करके आए और खातरी हो रही थी, तो डर किस बात का लगना था। तो बाबा ने हम सभी को गरम गरम दूध पिलाया और फिर हमारे ऊपर रजाई उड़ा दी और हम तो सो गए आराम से। अब शाम हो गई, सभी के माता पिता इंतजार कर रहे, आज तो बच्चे दिखाई नहीं दिए, सबको ये हो गया आज बच्चे कहाँ निकल गए, कहीं दूर निकल गए। शाम होती है तो फिर यहाँ पर, पहले तो बहुत डर था, अभी तो इतना डर नहीं है, लेकिन पहले तो कहाँ से भालू आ जाता था, ये सब कुछ होता था, इसलिए सब घबराए कि बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बाबा के पास आए, कहा बाबा आज तो बच्चे सुबह के गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए हैं, कहाँ तक गए होंगे मालूम नहीं। बाबा मुस्कुराए, बाबा ने कहा बच्चे घबराओ नहीं, सब सोए पड़े आराम से। तो कैसे बाबा कभी भी आंख नहीं दिखाता था, डांटने की तो बात बहुत दूर है, लेकिन आंख भी नहीं दिखाता था, इतना जिगरी प्यार, ऐसा कौन कर सकता है दुनिया में, खुद के मां बाप भी नहीं करते हैं। इसलिए साकार बाबा के प्यार के सामने लौकिक मां बाप का प्यार एकदम फीका लगता था। हालांकि मैं एक की एक ही बेटी थी, बहुत उन्होंने मुझे प्यार से पाला है, अपनी तरफ से उन्होंने प्यार दिया है, लेकिन बाबा के प्यार के आगे लौकिक मां बाप का प्यार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हमने अनुभव किया, इतना बाबा बच्चों को, छोटे बच्चों को, बड़ों को दे तो ठीक है भाई ये सेवा करेंगे, ये कुछ करेंगे, बच्चों को प्यार देता था। क्यों? बाबा एक एक बच्चे के भविष्य को भी जानता था। भले बाबा कहता है कि मैं जानी जानन हार नहीं हूं, ऐसे बाबा कह करके अपने को छुड़ा लेता है, नहीं तो बच्चे जो हैं बाबा को एक ज्योतिषी के रूप में यूज करना शुरू कर दे, अंधश्रद्धा से बाबा को मानना शुरू कर दे। इसलिए बाबा हमेशा ऐसे ही कहते हैं कि मैं जानी जानन हार नहीं हूं, लेकिन था, एक एक बच्चे के भविष्य को बाबा जानता था ही नहीं, जानता भी है अभी भी, क्योंकि हमने साकार ब्रह्मा बाबा का भी अनुभव किया, अव्यक्त बाप दादा का भी हमने अनुभव किया है। तो इस प्रकार से बाबा अपने एक एक बच्चे के भविष्य को जान करके उस अनुसार पालना देता था। और इसीलिए बाबा के प्यार के कारण, वो रूहानी प्यार के कारण बाबा की अट्रैक्शन होती थी, और इसी अट्रैक्शन से खींच करके बार बार मन होता था कि हम बाबा के पास जाएं, हम बाबा के पास जाएं। इतनी तो बुद्धि थी नहीं कि इतना बड़ा बाबा, इतने बड़े विश्व के कारोबार की जिम्मेवारी, बाबा कितना बिजी होगा, इन सब बातों से तो हम अनजान थे। हमारे लिए तो बस हमारा बाबा है। जैसे किसी का पिता कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट पोजीशन पर हो, कितनी भी बड़ी उसकी जिम्मेवारियां हो, लेकिन बच्चे के लिए तो बाप ही है ना। बच्चा थोड़ी जानता है कितनी जिम्मेवारी, अभी मुझे नहीं बुलाना है, अभी मुझे नहीं जाना, नहीं, वो तो हक से जाता है। बच्चा तो हक से जाता है अपने माँ बाप के पास में। बस वही हमारा हाल था, बाबा की जिम्मेवारियों को हम नहीं जानते थे। बाबा की इतनी एज थी, वो हमको लगता ही नहीं था बाबा की इतनी एज है, क्योंकि बाबा हमारे साथ खेलता भी था। जहां अभी शांति स्तंभ है ना, वहां पूरा एकदम कच्चा ही ग्राउंड था, तो वहां बाबा के साथ बैडमिंटन खेलने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ। आता तो था नहीं खेलना, क्योंकि बाबा तो जितनी मैं हूं ना अभी, इससे एक दो इंच और बड़ा होगा हाइट में, पूरा 6 फुट का बाबा था और एकदम स्ट्रेट चलता था इतनी उम्र होते हुए भी। तब तो हम तो छोटे छोटे थे, लेकिन बाबा के साथ खेलना है तो हमारा तो वो रैकेट से मारते थे, गिर जाता था फूल। लेकिन बाबा हमेशा उत्साह बढ़ाता था, बच्चे जीत गए, बाबा हार गया, बच्चे जीत गए, बाबा हार गया, गोद में ले लेता था, कभी भी हार महसूस नहीं होने दी। हमेशा बस बच्चे जीत गए। तो इस तरह से बाबा बच्चों के साथ छोटा बच्चा बन जाता था। तो इसलिए वो एज का, जो आजकल दुनिया में कैसे एज डिफरेंस बहुत है, घर में देखेंगे तो एज डिफरेंस हो जाता है यूथ का, और जो ओल्ड एज वाले हैं उनका बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है एज का, और उसके कारण से उनका आपस में तालमेल नहीं हो पाता है कई बार। और कई बार तो यंगस्टर्स घर में जो ओल्ड एज वाले होते हैं ना, तो उनको ऐसे ही कहते, आपको कुछ पता नहीं चलता, आपको कुछ पता नहीं चलता। जैसे उन्होंने तो बिचारों ने इतनी दिवालियां ऐसे ही देख ली हैं, लेकिन बाबा के साथ एज डिफरेंस नहीं लगता था। बाबा इतना निर्माण बच्चों के साथ बच्चा हो जाता था, और यही कारण था कि बाबा के साथ दिल का स्नेह हर एक का जुटता था, और ऐसा लगता था बाबा मेरा है ना, बाबा मेरा है ना। और इसी कारण से हम बार बार बाबा के पास जाने का प्रयास करते थे। क्लास के बाद भी बाबा के साथ घूमने तो जाना ही होता था, लेकिन दिन में भी ऐसा लगता था कि हम बाबा के रूम में जाएं, बाबा के पास जाएं। बात कुछ नहीं होती थी, कुछ बात करनी ऐसा कुछ नहीं, बस जाना है, पास में बैठे रहना है, बस ऐसे अंदर से इच्छा होती थी। लेकिन हमारे लच्छू दादी जो बाबा की संभाल करते थे हर प्रकार से, वो हमको कहते थे, देखो जब बाबा को मिलना होगा ना तो बाबा तुमको बुला लेगा, इसलिए अभी नहीं जाना है। तो जब ना बोलते थे ना, अभी नहीं जाना है, तो हमको अच्छा नहीं लगता था। ये बाबा के पास रह सकती है, ये क्यों जा सकती है अंदर, इनका हक है, हमारा हक नहीं है, हमको ऐसा फील होता था। क्यों, बाबा हमारा नहीं है क्या, हमारा हक नहीं है, हम क्यों नहीं अंदर जाएंगे, ये क्यों अंदर जा सकती है। बुद्धि इतनी ही थी ना, छोटे थे तो उनके साथ हमको रेस होती थी कई बार, तो कि ये बाबा के पास रह सकती है, ये बाबा के पास जा सकती है, और हमको रोकती है अंदर जाने से। तो जब भी लच्छू दादी इधर उधर होती थी ना, तो हम हमेशा अंदर घुस जाते थे। अभी जो बाबा के रूम में बाबा की खटिया है ना, उस खटिया पर बाबा आराम करते थे थोड़ा। वैसे तो ज्यादा टाइम तो बाबा का झोपड़ी में ही होता था, सारे पत्र वगैरह लिखने ये वो सब, लेकिन वो खटिया पर बाबा जैसे आराम करते थे, इसलिए लच्छू दादी हमको रोकती थी कि बाबा को थोड़ा तो रेस्ट मिलना चाहिए। ओल्ड एज थी, इतना सभी कारोबार, बाबा की जिम्मेवारियां, पर हम इन सब बातों से हमको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमको ये भान ही नहीं था, हमको महसूसता ही नहीं था ना इस बात की, बस बाबा हमारा है, बाबा हमारा है, ये दिल की खींच होती थी। और इतना जरूर हमको समझ थी कि बाबा को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए हम चप्पल निकाल के बिल्कुल दबे पैर से अंदर जाते थे बाबा के रूम में, बिल्कुल भी आवाज ना हो। और स्थान कहाँ होता था, बाबा की चारपाई के नीचे, वहां बड़ा सुकून मिलता था बैठ करके, मालूम नहीं क्या सुकून मिलता था, लेकिन बस खींच होती थी और चुपचाप बाबा की चारपाई के नीचे जाकर के बैठ जाते थे। बाबा की आंखें बंद है, बाबा लेटा हुआ है, लच्छू दादी इधर उधर कहीं हो गई है, बाबा आराम में है तो थोड़ा इधर उधर उनका काम कर लेती होंगी। बाबा आंख बंद किए किए ही हाथ ऐसे करता था नीचे, चारपाई के नीचे। अच्छा बच्ची आ गई हो, हम यह आश्चर्य में होते थे बाबा को पता कैसे चला, हम तो इतना चुपचाप आए हैं, बिल्कुल पैरों की आवाज भी नहीं हमने होने दी है, हम श्वास भी धीरे धीरे ले रहे हैं कि बाबा को डिस्टर्ब ना हो, इतनी अक्कल थी, पर खींच ऐसी थी ना, रोक नहीं पाते थे हम अपने आप को, क्या करें। वो कहते ना कृष्ण के पीछे गोपियां पागल होती थी, दीवानी होती थी, शायद हम भी किसी जन्म के वो गोप गोपियां ही होंगे ना उनके, इसलिए वो लास्ट जन्म में भी वो खींच थे, और इसलिए हम नीचे जाके बैठ जाते थे चारपाई के नीचे। और बाबा बहुत प्यार से ऐसे हाथ करता था और कहता, हाँ बच्ची आ गई हो। हम बाबा का हाथ पकड़ते थे और बाबा ऐसे ऊपर चारपाई पर हमको ले लेते थे, और अपनी चारपाई पर अपनी रजाई उड़ा करके हमको सुला लेते, हम तो बाबा को लिपट के सो जाते थे। बाबा तो बहुत आराम नहीं करता था, थोड़ा सा ही आराम करता था, फिर बाबा तो उठ के चला जाता था, और हम आराम से बाबा की चारपाई पर बाबा की रजाई में बादशाह की तरह सोए रहते थे। फिर लच्छू दादी आती, अरे शैतान ये कहां से घुस गई, फिर हम उनको चिढ़ाते थे और भाग जाते थे। कहने का भाव, कितनी आप समझ सकते हो कि बाबा के अंदर वो रूहानी आकर्षण, बाबा का वो रूहानी व्यक्तित्व, जो एक अबोध बालक को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, कितनी बाबा की आंतरिक तपस्या होंगी। ऐसे ही नहीं वो व्यक्तित्व बना होगा, परंतु बाबा की गहन तपस्या के फलस्वरूप बाबा का वो व्यक्तित्व बना, बाबा की वो रूहानी पर्सनैलिटी बनी, जिससे बड़े तो क्या बच्चे भी आकर्षित हुए बिना, प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। तो इस तरह बाबा बच्चों को बहुत ही प्यार से वो पालना देता था कि हर एक बच्चे का उस पालना से भविष्य बन जाता था। और मैं समझती हूं कि यही बाबा का प्यार और पालना शायद इतना घर कर गया कि जो और कहां भी बुद्धि अट्रैक्ट नहीं हुई, बाबा ने बुद्धि को पकड़ करके रखा। क्योंकि जब हम सेवा केंद्र में आए उस समय सेवा केंद्रों में भी जैसे कि एक बेगरी पार्ट था। उस समय सेवा केंद्रों में ना तो गैस स्टोव होता था, फ्रिज की तो बात ही छोड़ दो, मतलब कोई भी साधन नहीं होता था। यहां तक कि कोई कोई सेवा केंद्र तो हिमाचल प्रदेश में ऐसे थे, हम एक जगह रहते थे हमीरपुर में, कि सुबह को हमने खाना खाया, शाम को क्या खाना है वो हमको पता नहीं होता था। लेकिन वो बाबा की प्यार और पालना अनजान पने में ही इतनी ताकत भर गई, वो शक्ति भर गई, कभी भी ये संकल्प भी नहीं आया क्या सारे जीवन ऐसी बितानी पड़ेगी। और ये हमने एंजॉय किया, हर परिस्थिति को एंजॉय करने की एक ताकत आ गई। क्योंकि वो ताकत नहीं होती ना तो शायद हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। और उसका परिणाम तो जानते ही है क्या होता। तो बाबा की ही कमाल है, हमारी खुद की कुछ मेहनत नहीं है, मैं ऐसा समझती हूं। लौकिक में तो कुछ था ही नहीं मेहनत, लेकिन यहां आने के बाद भी बातें तो हर फील्ड में आती ही है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, शादी करके जाओ कि नौकरी धंधे पर जाओ, किसी भी फील्ड में आप जाओ, अनेक प्रकार के ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही, बातें तो आएंगी ही, लेकिन उनको फेस करने की ताकत जो बाबा से मिलती है वो और कहां नहीं मिल सकती है। तो इस प्रकार से बाबा के अंग संग रह करके वो ताकत हमारे में भरती गई, लेकिन वो अनजान पने में ही, तब थोड़ी पता था हमारे में ताकत भर रही है। बहुत छोटी थी तो छोटे बच्चों को तो मिठाई ही अच्छी लगती है ना, कड़वा वड़वा तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है किसी को भी। लेकिन बाबा भविष्य को भी देखता था, कि बाबा को पता था कि यज्ञ में आएंगी और कहां कहां सेवा के हिसाब से रहना होगा, जाना होगा, तो हर जगह किस प्रकार से एडजस्ट हो सके, तो उसकी तैयारी भी बाबा ने जैसे बचपन से ही करा दी। एक बार क्लास के बाद जैसे बाहर आंगन में बाबा खड़े थे, तो हम भी उधर ही थे, तो बाबा ने ऐसे करके बुलाया, बाबा ने कहा बच्ची आज भोजन पर आना, 12 बजे आना। तब तो टाइम भी देखना नहीं आता था कि 12 कब बजेंगे। तो हमने कहा कि भाई हमको नई फ्रॉक पहनाना, आज हमारी माँ को कहा तो भोजन पर जाना है बाबा के साथ, कि हाँ तेरे को ही बुलाए, तू ही रह गई भोजन के लिए। किसी को विश्वास ही नहीं आवे। हम कहें भाई बाबा ने खुद कहा है, और 12 माना कि हमारे लिए तो बहुत लंबा टाइम हो गया, बार बार पूछ ले 12 बज गए, किसी किसी को भी पूछ ले 12 बज गए, वो कहते नहीं ये बज ही नहीं रहे आज, 12 क्यों नहीं बज रहे आज, जैसे हमको लगे क्यों आज 12 नहीं बज रहे हैं। 12 बजे तक तो कितने लोगों से पूछ लिया हमने 12 बज गए, वो कहते नहीं, तो थोड़ा मन ऐसे हो जाए बजे अभी तक भी नहीं बजे 12, अभी तक भी नहीं बजे 12। और जैसे ही 12 बजे का पता चला और हम बाबा के पास गए, तो बाबा ऐसे एक पटले पर थाली होती थी और एक पर खुद बैठता था, लच्छू दादी भोजन पिरसती थी, तो मैं गई तो बाबा ने बाजू में बिठाया, तो बाबा के बाजू में बैठी, भोजन पिरसा गया, भोजन में करेले की सब्जी थी। अब करेला तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन हाँ इतना मालूम था कि उठ के भागना नहीं है, ये सेंस थी, नहीं तो क्या बच्चे तो उठ के भाग जाए ना देख करके, पर ये सेंस थी कि उठ के भागना नहीं है। बाबा ने बहुत प्यार से गिट्टी तोड़ी, सब्जी लगाई करेले की और मेरे मुख में डाली, और सचमुच इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, पता ही नहीं चला मैंने करेला खाया है। और वो दिन, आज का दिन मेरी फेवरेट सब्जी है करेला। गुजराती लोग तो गुड़ डालते हैं करेले में, चीनी डालते हैं या गुड़ डाल के, गुड़ माना पूरा जैसे चढ़ाई देते हैं गुड़ करेले के ऊपर, भले ना चढ़ा दे करेला तो करेला ही रहेगा, लेकिन हम बिना गुड़ और बिना चीनी का जो यूपी में बनता है ना वो ही बनाते हैं आज भी हम। और जैसे कि वो मीठा लगा, बड़े होके मालूम पड़ा मीरा तो विष का प्याला पी गई थी, मैंने तो भगवान के हाथ से करेला ही खाया और वो तो अमृत बन गया मेरे लिए जैसे। तो बाबा छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देता था, और जैसे कि बचपन से ही भविष्य का देख करके वो हमारा पालना करता था, जिससे हम भविष्य में कहाँ भी जाएं, किसी भी स्थान पर रहें, किन्हों के साथ भी रहे, सामने वाला कैसा भी है, लेकिन हम उनसे एडजस्ट होकर के रह सके, प्यार से रह सके, बाबा ये सब कला अपने बच्चों को सिखाता था। और इसीलिए तो आज हमारी दादियां इतना देखो त्याग तपस्या करके सारे विश्व में कितनी सेवा करके आज अपने यज्ञ को कितने आगे तक ले आई हैं। तो कैसे बाबा के बाद हमारे प्रकाशमणि दादी जी ने भी, क्योंकि जब मैंने 10वीं पास की तो उस समय त्यागी जी की तो ऐसी इच्छा थी कि कब मैं बाबा के यज्ञ में इसको समर्पित कर दूं। तो त्यागी जी ने, हम मधुबन आए हुए थे, दादी से मिल रहे थे, तो दादी को कहा दादी इसने अभी 10वीं पास कर ली है, क्योंकि उस समय इतना ज्यादा बहनें पढ़ती भी नहीं थी, तो अभी ये बाबा के यज्ञ में सेवा के लिए जा सकती है। तो दादी ने कहा देखो अभी जो है ना पढ़े लिखे वीआईपीज की भी सेवा करनी होती है, इसलिए इसको कॉलेज तक अवश्य पढ़ाओ, दादी का डायरेक्शन था, तो दादी के डायरेक्शन से ही फिर मुझे आगे पढ़ाया गया। लेकिन जैसे ही मैंने कॉलेज की परीक्षा पास की, मैं घर में खाली नहीं बैठी। हमारे लौकिक भाई पंजाब में ऑफिसर थे, तो मैं उनके साथ पंजाब देखने ही गई थी। वहां रेगुलर क्लास करने की तो आदत थी बचपन से ही, सभी धारणाएं, बाजार का कुछ खाना पीना नहीं, ये सब धारणाएं पक्की थी छोटेपन से ही, क्योंकि त्यागी जी की धारणाएं बहुत मजबूत थी, तो उस हिसाब से हमारी भी सब धारणाएं थी। तो रोज वहां क्लास करने के लिए जाते थे भाई के साथ में सेंटर में। तो बहनों की नजर तो कन्याओं के ऊपर होती ही है, क्योंकि जितनी कन्याएं तैयार होंगी उतना ही तो बाबा के सेवाएं बढ़ेंगी, सेंटर्स खुलेंगे। तो वहां के हमारे राज बहन जी ने हमारे भाई को कहा, इसको 15 दिन के लिए सेंटर में भेजो। उन्होंने देखा ये तो तैयार ही माल है। तो हमने कहा बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ ये पंजाबी बोलते हैं, तो मैं कैसे पंजाबी समझूंगी और बोलूंगी, इसलिए यहाँ तो नहीं, वहाँ यूपी में रह लूंगी सेंटर में। तो भाई ने जाके ऐसे ही बता दिया बहन जी को। तो बहन जी ने कहा यहाँ कोई भी पंजाबी नहीं बोलेगा, सब हिंदी बोलेंगे। मैंने कहा तो ठीक है। तो 15 दिन के लिए ही सिर्फ मैं गई थी सेवा केंद्र पर, लेकिन उसी बीच यहां पर कन्याओं की ट्रेनिंग थी, टीचर्स ट्रेनिंग, और दादी को भी मालूम पड़ा, तो दादी ने बहन जी को कहा, राज बहन जी को, कि उसको भी भेज देना ट्रेनिंग में। और वहां